तो कौन सा भगवान की माया सत्य है? बोले नहीं, माया जो है वो भगवान पर आधारित है। तब वो पूछते हैं तो सत्य कौन है, तो उसी पर कहते हैं कि सत्य है भगवान वासुदेव, और कुछ भी सत्य नहीं। अविद्या मनसा कल्पितास्ते, आजकल जो लोग उसको एटम कहते हैं, परमाणु को एटम कहते हैं, उसको टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वो नहीं किया जा सकता, लेकिन वास्तव में मनसा कल्पित है। कोई एटम उन्हें प्राप्ति नहीं है, कल्पना मात्र है, वो कोई सत्ता नहीं है। वास्तव में भगवान की माया सब तो डिफ्यूज्ड होती है, जगत के रूप में बनती है, चाहे हवा पानी पृथ्वी आदि के रूप में। एवं कृष्ण स्थूल मणि बृहत असत्य सज्जीव मजीव मन्यत द्रव्य स्वभाव से काल कर्म नामना वजह वे ही कृतम द्वितीय। इस तरह से चाहे कोई क्षीण शरीर हो या छोटी वस्तु हो या बड़ी वस्तु हो, स्थूल हो या अणु बृहत, ऊंची हो नीची हो, छोटी हो बड़ी हो, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, असत हो सत्य हो, असत का अर्थ होता है सूक्ष्म और सत का अर्थ है प्रकट, स्थूल या जीवित हो अजीवित हो, या द्रव्य स्वभाव आशय काल कर्म नाम से वास्तव में अजया कृतम माया ने किया है। अजा माया को कहते हैं, माया ने इन वस्तुओं को उत्पन्न किया है चाहे कोई भी, लेकिन नाम देते हैं हम लोग, हम लोग नाम लिखते हैं, बहुत बहुत नाम लिख देते हैं, लोहा पर नाम लिखते हैं, गाड़ी पर नाम लिखते हैं, हाथ पर नाम लिखते हैं, कई जगह नाम 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 के अनुसार व्यवहार चालू कर देते हैं। लेकिन यह व्यवहार पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहता है, इसीलिए यह सत्य नहीं, जो बाधित हो जाए काल द्वारा स्थान द्वारा वो सत्य नहीं, तो पहले भी नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा। यह कृतम द्वितीयम, यह द्वितीय वस्तु है, द्वितीय का अर्थ होता है आत्मा नहीं है, यह सत्य नहीं है, आत्मा कुछ और है, चिन्मय पदार्थ कुछ और है। कृतम द्वितीयम आत्मा से भिन्न सृष्टि है, यह द्वितीयम का अर्थ है जड़ पदार्थ मैटर स्प्रिट में, तो इसको तुम अवेह जानो, ये माया के द्वारा उत्पन्न की गई है वस्तु सब कुछ, और इसमें किसी शरीर को मैं मानना और किसी को मेरा मानना यह गलत है, यह भ्रम है, माया ने उत्पन्न किया। पर ही किम सत्य, तब राजा रघुवंश फाइनल पूछते हैं तब सत्य क्या है, तो ये कहते सत्य है भगवान वासुदेव। ज्ञानम विशुद्धम परमात्मेकम अनंतरम तो बहिर्ब्रह्म सत्यम यत् प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम जद वासुदेवं कवयो वदन्ति। ज्ञानम सत्यम, माइक पदार्थ के अलावा चिदेक वस्तु सत्य है, चिन्मय वस्तु जो है और जो अद्वय है वो सत्य है, और ज्ञान ही सत्य है। ज्ञान का अर्थ जानकारी नहीं है, ज्ञान का अर्थ है चित वस्तु स्पिरिचुअल वस्तु, और वह अद्वय है। अद्वय का अर्थ है कि उसमें सजातीय विजातीय और स्वगत भेद नहीं है। भगवान एक ऐसी चिन्मय वस्तु है जिनसे किसी का सजातीय भेद भी नहीं है, विजातीय भेद भी नहीं है और स्वगत भेद नहीं है। भाई शास्त्र के वाक्य है फिलोसफी के, इसको समझना चाहिए। भेद का अर्थ होता है संस्कृत में जो वस्तु किसी वस्तु से बिल्कुल अनपेक्ष हो, उसे कोई संबंध न हो और उसके बिना भी उसकी सत्ता बनी रहे, तो कहेंगे कि उस वस्तु से उस वस्तु का भेद। जैसे हम हैं, हमसे और इस माइक से कोई संबंध नहीं, हमारी अलग सत्ता है, इसकी अलग सत्ता है, तो हमसे और इससे भेद है। लेकिन अगर इसकी सत्ता हम पर आधारित हो, मेरे बिना न इसकी सत्ता रहे, तो कहा जाएगा कि हम मेरे साथ इसका अभेद है। ये जो पूरा जगत है जड़ और चेतन दो पदार्थों से बना है, जड़ पदार्थ जो है वो भगवान का विजातीय है और चेतन पदार्थ है वो सजातीय है, तो भगवान का विजातीय वस्तुओं से भी भेद नहीं है, क्योंकि विजातीय वस्तु जो है जड़ पदार्थ मैटर है वो अभी भगवान की शक्ति है, भगवान पर आश्रित है, भगवान के बिना उसकी अलग सत्ता नहीं,
इसलिए विजातीय वस्तु का माया का भी भगवान से अभेद है, भेद नहीं है, इसलिए अद्वैय कहते हैं। भगवान ही माया के रूप में बने हुए, उनकी शक्ति है, इन पर आश्रित है, भगवान के बिना उसकी सत्ता नहीं है। और सजातीय जैसे जीव है या अनंत कोटि भगवत स्वरूप है, अन्य भी भगवान अपने को प्रकाशित किए हैं, जीव है, सब सजातीय है, तो ये भी भगवान की शक्ति है। कोई भगवान का अंश है, कोई तटस्था शक्ति का अंश है, तो उनकी भी सत्ता कृष्ण के अलावा और नहीं है, कृष्ण पर आश्रित है, इसलिए कृष्ण का उनसे अभेद है, भेद नहीं। जो स्वगत भेद भी नहीं है भगवान में, स्वगत भेद हम लोगों में है, हमारा शरीर जड़ है और हम चिन्ह में अलग वस्तु, और यह जड़ वस्तु हम पर आधारित नहीं है। आत्मा इस शरीर को छोड़कर के चला जाएगा, फिर भी शरीर रहता है, चाहे जिस रूप में रहे, इसकी सत्ता रहती है, और आत्मा भी रहता है, कोई शरीर के कारण आत्मा नहीं रह रहा है, वो भी रहेगा, दोनों का कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से। लेकिन भगवान में स्वगत भेद नहीं है, उनका जो शरीर है वो पूर्ण चिद वस्तु है, चिद घन है, उसमें मैटर नहीं है, इसलिए उनको अद्वैय कहते हैं। जस ज्ञान मद्वय ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सब। तो ऐसे अद्वैय तत्व ब्रजेंद्र नंदन भगवान सत्य है, उनको कह रहे हैं वे विशुद्धम, विशुद्ध का अर्थ है गुणातीत, प्रकृति के गुणों से कोई संसर्ग नहीं है, प्रकृति के नियामक है, और हम लोग तो प्रकृति के वश में है। अच्छा, वही परम अर्थ है, परम अर्थ है का अर्थ है परम प्रयोजन। इस जगत में प्रत्येक जीव कुछ अर्थ रखता है, कुछ चाहता है, तो उसको अर्थ कहते हैं। तो परम अर्थ क्या है जीव का, वो है आनंद, सुख, सभी जीव सुख चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है वो परम अर्थ है, वही परम आनंद स्वरूप है, जेन के न प्रकार प्रत्येक जीव उनको ही खोज रहा है वास्तव में, लेकिन गलत ढंग से। यदि कोई भी व्यक्ति सुख चाहता है तो इसका मतलब कि वो भगवान को चाहता है, ये भगवान के अलावा कहीं सुख है नहीं, वो सुख घन है, आनंद घन है, उन्हीं से सुख का विकिरण होता है, निकलता है, तो वही है परम अर्थ, परमार्थ। और वह है एकम, एकम का अर्थ अद्वितीय, मतलब सकल भेद विवर्जित। अथवा एक का अर्थ है कि भगवान कृष्ण जैसा भगवान बस वही है, दूसरे कोई नहीं है, एक ही भगवान है। अद्वयम अनंतरम, अनंतर का अर्थ होता है कि उनके भीतर कुछ नहीं है, भगवान के भीतर कुछ भी नहीं है, वो पूर्ण चिन्मय है। कभी कभी ऐसा लोग कहते हैं कि भगवान के भीतर सारा जगत है, भगवान के भीतर ही सारा जगत है, मिट्टी पहाड़ तारा पानी या कूड़ा कचरा जो भी है सब उनके भीतर, भगवान भी कहते हैं कि हाँ हमारे भीतर, लेकिन तत्वतः भगवान के स्पिरिचुअल बॉडी में ये सब कुछ भी नहीं है, पूर्ण चिदघन स्पिरिट के भीतर दूसरा कैसे रह सकता है, इस आत्मा में छेद किया नहीं जा सकता। जब आत्मा के भीतर छेद किया जाएगा, नैनम छेदम के शस्त्राणी, जब छेद किया जाएगा तब उसके भीतर कुछ रखा जा सकता है, और भगवान के भीतर छेद हो नहीं सकता, वो तो परम आत्मा है, तो उनके भीतर जगत कैसे हो सकता है, अभी संभव नहीं, इसीलिए उनको अनंतर कहते हैं, उनके भीतर कुछ नहीं है। अच्छा, तब ये कहा जाएगा उनके बाहर तो है संसार, तो कहते हैं नहीं, उनके बाहर भी कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ उनके भीतर है। उनके बाहर कुछ नहीं है, यही है भगवान का अचिंत वैभव। भगवान सबके भीतर हैं और भगवान के भीतर सभी, ये फिलॉसफी। बाहर उनके कुछ नहीं है, सभी प्राणियों के बाहर भी व्याप्त हैं और भीतर भी किसी के नहीं, भगवान के भीतर कोई नहीं है और भगवान के बाहर कोई नहीं, इसका क्या अर्थ हुआ? भगवान के भीतर तो कोई नहीं है तो समझ में आ ही रहा है, और भगवान के बाहर भी कोई नहीं है, मतलब विराट रूप से सबको अपने अंदर रखे हुए, वो सत्य है। प्रत्येक प्रशांतम, प्रत्येक का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, नहीं, प्रत्येक का अर्थ होता है छिपे हुए,
हृदय में गुप्त रूप से छिपे रहते प्रशांत। तो ब्रह्म सब ब्रह्म कहा जा रहा है निर्विशेष ब्रह्म के लिए। जस्यो अप्रभा प्रभव तो जगदंड कोटि कोटि सुशेष भूषधा निभुत भिन्न। यह ब्रह्म ज्योति ही अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में व्यक्त हुआ है। भगवान की प्रभा से जगत की सृष्टि हुई। तो ज्ञानी लोग भगवान के उस निर्विशेष ज्योति में बहुत आसक्त रहते हैं क्योंकि वो भी भगवान का प्रकाश है। तो ये ज्ञानियों की उपासना। प्रशांत परमात्मा के लिए कहा जा रहा है जो हृदय में रहते हैं सबके, और संसारिक भोगों के लिए ललायित नहीं रहते। और भक्तों के जो उपास्य हैं अपने धाम में नित्य लीला करते रहते हैं, छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, उन्हें भगवान कहते हैं। तो ब्रह्म प्रत्येक प्रशांत और भगवत शब्द संज्ञम, ये संज्ञा है उस परम सत्य की। और अब खोल करके कह रहे हैं कि विद्वान लोग शास्त्रज्ञ लोग जिसे वासुदेव कहते हैं, जब वासुदेव हम कवयो बदनते, जिस परम सत्य को कवय विद्वदगण वासुदेव हम बदनते, वासुदेव का स्पष्ट आ गया, सारे व्याख्यान का सार पहुंच गया कौन सत्य है। बाकी सारा असत्य है, सत्य है भगवान वासुदेव। जिनको लोग वासुदेव कहते हैं, वसुदेव जी के पुत्र कहते हैं। अब तो क्लियर हो गया, अब तो कोई संदेह रहा नहीं। जिनको विद्वान लोग वासुदेव कहते हैं, मूर्ख लोग भले ना जाने कृष्ण को, लेकिन कवय कभी कहते हैं जो वेद शास्त्र जानते हैं, वो जानते हैं कि परम सत्य है वो है कृष्ण वासुदेव। तो आजकल यदि हरे कृष्ण मूवमेंट से प्रचार किया जाए कृष्ण का, तो लोग कहते हैं हाँ आप लोग कहिए कृष्ण आपके लिए श्रेष्ठ हैं, आपके इष्ट देव हैं, लेकिन हमारे लिए दुष्ट। ये इस्कान का भागवत है जिसे पूछिए, ये इस्कान जब बना तब छपा हुआ है नहीं? इस्कान कृष्ण का प्रचार कर रहा है, कृष्ण का प्रचार कर रहा है जो वेद शास्त्र में पहले से लिखा गया है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, हमसे लोग पूछते हैं कि स्वामी जी बहुत लोग प्रचार करते हैं तो आप क्यों प्रचार कर रहे हैं, और आपके प्रचार में और उनके प्रचार में अंतर क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते थे कि हम शास्त्र का प्रचार करते हैं और लोग अपने मन का प्रचार करते हैं, यही अंतर, यही अंतर। जो कवि लोग, कवि का अर्थ है यहां ब्रह्मा जी, भगवान शिव, शनकादिक, नारद जी, ये कवि, कवि का अर्थ विद्वान होता है। आजकल जैसा कविता रच करके सभा सोसाइटी में ताली बजाने वाले नहीं है, कविता रच दी, ये कवि का काम नहीं है। कवि मतलब भगवान का भक्त, ज्ञाता। कवय जब वासुदेव बदलती, जिनको वासुदेव कहते, स्पष्ट हो। तब राजा रहुगण अब हाथ जोड़कर कहते हैं, कृष्ण को कैसे पाया जाएगा, वासुदेव को कैसे पाया जाएगा, क्या उपाय है, सबसे अंतरंग उपाय बताइए जो करने से भगवान कृष्ण को पाया जा सकता है। तब न छंद सह नहीं व जलाग्नि सूर्य बिना महत पाद रजो अभिषेक। महत्पुरुषों की कृपा के कृपा से भक्ति उत्पन्न होती है और उस भक्ति से ही कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो जब तक महत की कृपा नहीं होती और भक्ति नहीं होती है, तब तक अन्य किसी भी कार्य से कृष्ण नहीं मिलेंगे, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। संबोधन करके कह रहे हैं, प्रिय रहूंगा तुमको मैं बहुत कोई ये बात बता रहा हे रहुगण, कोई भी पुरुष महत्पाद रज अभिषेकम बिना, महतम भागवता नाम पाद रज सेवाम बिना, भगवत भक्ता नाम पाद रजसा आत्मनो या अभिषेकम स्नानम तत् बिना। तो भगवत भक्तों के चरण रज से जब तक अपना स्नान नहीं होता है, तो इसके बिना एक मतलब यह परम सत्य भगवान श्री कृष्ण तपसा न एव याति, एव शब्द लगा हुआ है, न एव सब जगह लगाना पड़ेगा, न एव तपसा न एव जाति, ये तप से नहीं मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। तप से वे मिलेंगे कब, तप कब सहायता करेगा, जब महत्पाद रजो विशेष भी होगा तब, तो नहीं तो अकेले तप काम कुछ भी नहीं कर सकता है। तपसा न जाति, तप से भगवान नहीं मिलते हैं। तप मतलब इंद्रिय निग्रह करना, भोगों को रोकना, स्वधर्म का पालन करना, ये तप है। वर्ण धर्म आश्रम धर्म आदि का पालन तो तप से नहीं मिलते। तो कहेंगे यज्ञ आदि करने से, वैदिक कर्म करने से, पूजा करने से, देवताओं की आराधना करने से मिलते होंगे। इज्जा से न एवं जाति, पूजा से नहीं ही मिलते। यह इज्जा का भगवान की पूजा नहीं है। बहुत वेदों में वर्णन है अन्य देवताओं की पूजा का वर्णन, तो इज्जा वैदिक कर्मकांड से भगवान नहीं मिल सकते। न एवं एवं सब जगह है, अवग्रह लगाना पड़ेगा, नहीं ही मिल सकते हैं, नहीं ही मिल सकते। अच्छा, तो इस पर राजा रघुवर कहते हैं कि दान एक ऐसी वस्तु है जिससे भगवान की प्राप्ति शायद हो सकती है। इसको निर्वपण करते, निर्वपण, निर्वपण का अर्थ है बोना, कुछ देना गरीब को, दीन दुखी को देना। वास्तव में यह बहुत उत्तम साधन है। महाराज परीक्षित को अंत में किसी किसी ने बताया था कि महाराज आप दान दीजिए, दान देने से आपकी सदगति होगी। ये आत्मनिर्विवाद है कि दान देने वाले को उच्च लोक मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन केवल मनुष्य दान दे और किसी महत्पुरुष की शरण न ले, उसके पाद रज में अभिषेक न करे, तो केवल अन्न आदि के दान से कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते। निर्वपणाद न एव जाति, अथवा गृहात्वा न एव जाति। जो कोई आदमी गृहस्थ धर्म का आचरण खूब अच्छी तरह से कर रहा है, तो गृहस्थ धर्म के पालन से भी बहुत उत्तम गति प्राप्त होती है। तो ये कहते हैं कि परोपकार के लिए ही गृहस्थ धर्म का आचरण कोई करे, लेकिन महत्पुरुष के चरण में अभिषेक न करे तो गृहात्वा न एव जाति, हर गृहस्थी के पालन से भी वो भगवान को नहीं पाएगा। इतने बड़े ऊंचे ऊंचे साधन, तब एक वेद शास्त्र पढ़ने से तो प्राप्त कर सकता है, पर न छंद सा। वेदाध्ययन आदि करके ब्रह्मचारी धर्म से भी इसको नहीं पाएगा। देखिए कई बातें बताई जा रही हैं, गृहस्थ का धर्म है दान देना, गृहस्थी का आचरण, तो गृहस्थ धर्म से भी नहीं जाएगा, ब्रह्मचारी का धर्म पालन करके भी नहीं प्राप्त करेगा, और वानप्रस्थी का धर्म पालन करके भी नहीं पाएगा, और न तो संन्यास धर्म के पालन से पाएगा कृष्ण को, न जलाग्नि सूर्य, चाहे जल में खड़ा होकर तपस्या करे, जाड़े के दिन में आकंठ शिशिरोदके ठंडे पानी में, इसको शरीर को ठंडा करने से कृष्ण नहीं मिलेंगे, या शरीर को हीट देने से भी नहीं मिलेंगे, और न वर्षा में खड़ा होने से, नांधी में खड़ा हो। आज हम लोग वर्षे में भींग गए तो उससे थोड़े कृष्ण प्रेम बढ़ गया। आज हम लोग भींगे थे बीच में, जो बीच में वर्षा में भींग गए, ठीक है, लेकिन ये कार्य तब सहायता करते हैं, सहायता करने वाले हो जाते हैं, जब वास्तविक महत्पुरुष की भगवत भक्त के चरणों का अभिषेक किया, उसका दास बन करके उसके मुख से सुना जाए। ये आगे बता रहा है महान कौन है और किस तरह उनका सेवन किया जाता है, किस तरह चरण रज में अभिषेक किया जाता है। यह चरण रज के अभिषेक का मतलब यह नहीं है कि उनकी चरण की धूल ले और बाल्टी में घोर करके रोज स्नान कर, यह अर्थ नहीं है। चरण रज का अभिषेक है कि वास्तव में उनका दास बन जाए, रियल ललक हो और दीनता आ जाए कि मैं आपका दास हूं, और वह उनसे प्राप्त करे। दासता होना मानसिक अधिक है, बाहरी कम है, मन में समर्पण होना चाहिए। तो बाहर से आदमी नम्र भी रहे और मन में कोई जिज्ञासा न हो और नम्र न हो महत्पुरुषों के सामने, तो उसे लाभ नहीं प्राप्त होता है उतना। कभी कभी ऐसे भी लोग देखे जाते हैं, गुरु को रात दिन गाली देते रहते हैं, लेकिन सामने होते हैं तो बहुत लंबा। इससे क्या होगा, ये तो कोई महत्पात्र जो अभिषेक हुआ नहीं। यह महत्पात्र जो अभिषेक है, महत् कौन है? अभी लक्ष्य ये प्रश्न उठता है कि महत् कौन है जिसके चरण रज का अभिषेक किया जाए। तो देखिए लक्षण बता रहे हैं महत् का। जत्रोत्तमश्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्रहण कथा विघात। जहां पर उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवाद, उनके गुण इतने बखाने जाते हैं, कहे जाते हैं, गाए जाते हैं कि वहां ग्राम्य कथा का विघात हो जाता है। ग्राम्य कथा सांसारिक वार्ता वहां हो ही नहीं सकती। इतना प्रस्तुत, इतना फैलता है या उसकी प्रशंसा की जाती है भगवान के गुणों की कि दूसरी बात आते ही नहीं। ग्राम्य कथा विघात। ये समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति सांसारिक चर्चा कर रहा है, खासकर ग्राम्य कथा का अर्थ होता है स्त्री पुरुष के विषय में चर्चा, जो ग्राम्य कथा का सांसारिक जो भी बातें हैं, ये राजनीति आदि की, ये सब ग्राम्य कथा है। तो ग्राम्य कथा जहां हो रही है वहां पर महत्व नहीं रह सकता, वो तो महत्पुरुष नहीं। जहां केवल कृष्ण के गुणों का वर्णन चलता है वो है महत्व। और ऐसे स्थान पर उस महत्व का आश्रय लेकर के यदि भगवान के गुणों को सुना जाए, निषेध मारा, यदि सेवन किया जाए भगवान के गुणानुवाद का, तो मुमुक्षु व्यक्ति की मति को वह वासुदेव में अचल लगा दे, वो गुणानुवाद ही लगा देता है। भगवान के गुण सुनते सुनते मति एकदम धस जाती है भगवान। यक्षति का अर्थ है फेंक देता है। भगवान का गुणानुवाद भक्त की मति को भगवान में अटैच कर देता है। भगवान में अटैच होने के लिए भगवान की बातें सुननी आवश्यक है। जैसे रुक्मिणी जी ने सुना, वो सुनी कुछ ब्राह्मणों के मुख से भगवान का गुणानुवाद, साधुओं के मुख से। तो भगवान के पास उन्होंने पत्र लिखा कि मेरा मन आप में आसक्त हो गया है, आप मुझे ले चलिए, मेरा विवाह दूसरे से निश्चित हुआ है, ऐसे वैसे। तो जब हम उत्तम श्लोक गुणानुवाद सुनते हैं तो वासुदेव सती मति हो जाती है, दूसरी तरफ जा नहीं सकती। जैसे पतिव्रता नारी अपने पति के अलावा स्वप्न में भी किसी पर मन नहीं कर सकती, किसी को मन अर्पित नहीं कर सकते, उस तरह से मन कहीं जा ही नहीं सकता है। भगवान कृष्ण में सती हो जाती है मति। यह कौन करता है? उत्तम श्लोक गुणानुवाद। भगवान के गुणों का जो अनुवाद है, वर्णन श्रवण कीर्तन, उससे भगवान में मति लग जाती है। इसका अर्थ है कि श्रवण कीर्तन में रहने वाला व्यक्ति ही महत्, महत् पुरुष के लिए कोई स्टैंप नहीं है कि मार दिया गया महत्व हो गया और किसी मठ का मालिक हो गया बस महत्, महंत कहते भी हैं, महान महान तो शब्द है, मतलब महत् शब्द। तो सब जगह मंदिर के मालिक को महंत या महंत कर, और वो महंत आने वाले लोगों से हमेशा जगत चर्चा करता है, हमेशा सांसारिक वार्ता करता। ये महत का लक्षण नहीं, महत का ये लक्षण दिया जा रहा है। जिनके मुख से, जिनके साथ में सर्वदा उत्तम श्लोक के गुणानुवाद होते हैं, कृष्ण के जस का वर्णन, इतना वर्णन होता है कि ग्राम्य कथा कोई चालू भी करे तो विघात हो जाए। ग्राम्य कथा विघात, विशेष घात, इसको कहते विशेष घात, विघात। निषेध्य मानो, नित्यम सेव्य मानो, भगवान के गुणों का वर्णन नित्य सुनना चाहिए। ऐसा सुनने से मति लग जाती है। यहां तक कोई मुमुक्षु है, संसार बंधन से छूटना चाहता है, उसकी भी मति भगवान में सती हो जाती है, फिर वो मुक्ति की वासना खो देता है। तो जो व्यक्ति मुक्ति की वासना खो देगा तो फिर सांसारिक वासना क्यों नहीं वो छोड़ सकता है? तो इसका अर्थ है कि भुक्ति और मुक्ति की वासना समाप्त हो जाती है भगवान की कथा सुनने से, भगवान कृष्ण का गुणानुवाद सुनने से मुक्ति वासना खत्म हो जाती है और भुक्ति वासना खत्म हो जाती है, केवल वसुदेव नंदन में मति सती हो जाती है। कितना सुंदर उपाय बता रहे। तो पिछले श्लोक का बहुत बार व्याख्यान हुआ है, बहुत व्याख्या भी है, मैंने तो इसकी व्याख्या किया है कि 65 में भरा हुआ है एक श्लोक।
इसमें बहुत सुंदर व्याख्या है। ये जो है अन्य धर्मों का तिरस्कार करने के लिए नहीं है कि भाई दान न करो या तपस्या न करो, ये करो ये न करो न करो, करो, लेकिन कृष्ण प्रेम पाने के लिए किसी महत्पुरुष के चरण का आश्रय लो। बहुवचन में कहा गया है महता, महान पुरुषों के चरण रज में अभिषेक करो, अभिषेक नहा लो, नहा लो। बिना नहाए तो तपस्या से नहीं कृष्ण मिलेंगे और न गृहस्थी के पालन से मिलेंगे और न और कुछ करने से, सुनने से मिलेंगे। इसका अर्थ ये हुआ श्रवण कीर्तन जले कराए से चाम, सुनने से और बोलने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। अब अपना थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं सारा प्रवचन करने के बाद। देखिए आजकल किसी आदमी से पूछा जाए कि आप कौन है तो आधा घंटा अपने परिचय में ही बिता देगा। हाँ मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऐसे हूँ, ऐसे हूँ। उनसे पूछा गया कि कस्तम निगूढ़ चर्षि द्विजान विभर्ष सूत्रम कतमो अधूत कस्या से कुत्र यहाँ की कस्म क्षमा नष्ट चौदसी नत शुक्ल, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, किसके पुत्र हैं, कौन, कुछ नहीं बोले। उससे क्या मतलब है, क्या मतलब है कि ये किस, ये कहाँ से आया है, इसका क्या पोजीशन है, मतलब है प्रवचन से उनको है। वो अपना परिचय बताया नहीं और वर्तमान का परिचय तो एक शब्द में नहीं बताया। कहते हैं कि राजन ये जो विषय संघ है, व्यवहार है, विषयों के आसक्ति भक्ति योग से गिरा देती है। अभी मेरा अनुभव है, मैं अपना अनुभव आपसे बता रहा हूं किस तरह से विषय की आसक्ति गिरा देती है भजन से। अथवा चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि परम कृपालु को भवान, ये सुनने के बाद राजा कहते हैं कि आप परम कृपालु हैं, हम पर कृपा की है, आप कौन हैं कृपया हमको बताइए। तो कितना छिप करके बता रहे हैं, वर्तमान जीवन का कोई परिचय नहीं दे रहे कि मेरा गांव कहाँ है, मेरे पिता कौन है, मेरा नाम क्या है, कुछ नहीं बता रहे। अरे अहम पूरा भरतो नाम राजा, मैं पहले भरत नाम का राजा था। कौन सा परिचय हुआ भैया। मैं पहले भरत नाम का राजा था, अपने जीवन का अनुभव सुना रहा पूरा, पूरा मतलब पूर्व जन्म में, दो जन्म के पहले। अहम पूरा भरतो नाम राजा, साधारण शब्द में बोल रहे हैं, मैं भी राजा था, भरत नाम का राजेश्वर था, राजर्षि था, ही नहीं कह। अपना परिचय मनुष्य को बिल्कुल दीन भाव से देना चाहिए, मैं भी पहले भरत नाम का राजा था। कितनी सिंपल बात कह, अहम पूरा भरतो नाम राजा, एक बात कह रहे हैं कि देखो भगवान की आराधना के लिए मैं सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त था, विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध, देखे और सुने गए पदार्थों और व्यक्तियों की आसक्ति के बंधन से पूरा मुक्त था। आसक्ति होती कैसे है, सुनने से या देखने से, दृष्ट श्रुत संग, संग मतलब आसक्ति है ना। परिवार में हम देखते हैं, रात दिन देखते रहते हैं तो आसक्ति बढ़ जाती है, इसलिए देखना नहीं चाहिए, देखने से आसक्ति बढ़ती है। बहुत चीज हम देखे हैं, बहुत बातें देखे हैं तो उसमें आसक्ति होती है। और श्रुत कुछ चीज देखे नहीं लेकिन सुनते हैं, स्वर्ग के विषय में सुनते हैं, अमेरिका के विषय में सुनते हैं, तो दूसरे शहर के विषय में सुनते हैं और सुनते हैं तो उसके प्रति एक राग बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती है। तो देखे हुए लोगों में या वस्तुओं में और सुनी हुई वस्तुओं में या लोगों के बीच जो संग होती है, आसक्ति होती है, उससे मैं पूरा मुक्त था। तुमने कुछ भी सुना या कुछ भी देखा, मेरी आसक्ति नहीं थी, आसक्ति के बंधन से मैं मुक्त था। और मुक्त होकर के एकांत में भगवान की आराधना कर रहा था, खाली नहीं बैठा था, खाली नहीं बैठा था, पूरा पूरा भगवान की भक्ति में लगा हुआ था। भगवता आराधना ई हमारा, ई हमारा मतलब लगा हुआ था, भगवान की आराधना में लगा हुआ था। लेकिन क्या कहें राजा जी, मृग संघात मृगो अभवम, मैं मृग की आसक्ति से मृग तक हुआ इस जन्म से पहले। इस जन्म से पहले मैं मृग हुआ, मृगो अभवम मृग संघात, मृग के संग से मृग हो गया। और हत अर्थ, मेरे जीवन का प्रयोजन कृष्ण प्रेम हत हो गया, गिर गया मैं कृष्ण भावना से, भगवान की भक्ति मेरी नष्ट हो गई, हतार्थ हत हो गई भक्ति। तो फिर राजा पूछते हैं कि तो पूर्व जन्म की आपको इस तरह से स्मृति कैसे है और इस जन्म में कैसे भक्त है, अगर आपकी भक्ति नष्ट हो गई तो इसमें कैसे भक्त है। तब कहते सामाम स्मृतिर मृग देहे वीर कृष्णा चन प्रभवानु जहाते, हे वीर इसी जन्म में नहीं यहाँ तक कि मनुष्य मृग शरीर में भी मुझे वो भगवान की स्मृति कभी छोड़ी नहीं।